आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्ते बच्चों, मेरा नाम हिमांशी भारद्वाज है और मैं आपके साथ विज्ञान किताब को डिस्कस करती हूँ। आज हम अध्याय 11 पर बात करेंगे जिसका नाम है समय एवं चाल। इससे कि पहले की ऑडियो में मैंने आपको बताया था कि पुराने जमाने में कैसे समय को नापा जाता था और आधुनिक समय में कैसे हम समय को नापते हैं। समय के कुछ हमने आपको अवधारणाएं बताई थी और पेंडुलम के बारे में बताया था जिसे हम सरल लोलक कहते हैं। समय के मात्रक पे बात की थी। आजकल जो समय का मात्रक या सबसे छोटी यूनिट है वह सेकेंड है, ठीक है। और इसके बाद हमने चाल पे बात की थी और चाल को हम आज फिर से डिस्कस करेंगे और पूरा डिस्कस करेंगे कि चाल क्या होती है। तो एक बार फिर से हम डेफिनेशन पर आते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस समय वस्तु की चाल कहते हैं। कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी भी एक समय में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, निश्चित समय में जो दूरी तय करता है उसको हम चाल या स्पीड कहते हैं। क्या मतलब हुआ कि डिस्टेंस जो ट्रेवल किया किसी ऑब्जेक्ट ने विद इन अ टाइम पीरियड उसको हम कहते हैं स्पीड, ठीक। तो अब हम बात करेंगे कि जब भी कोई कार या बस चलना प्रारंभ करती है तो उसकी स्पीड कम या बढ़ती रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम रोड पर चल रहे होते हैं, कोई वाहन चला रहे होते हैं, तो और भी वाहन वहां पे कई बार होते हैं जिसके कारण अवरोध होता है, कई बार रोकना पड़ता है, ब्रेक देना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो व्हीकल्स का स्पीड सेम नहीं होता, ठीक है। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल को असमान चाल कहा जाता है। अगर उसकी चाल मंद तीव्र ये होती रहती है तो उसको असमान चाल कहा जाता है, मंद और तीव्र होती रहे, ठीक है। जब हम यह कह सकते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्रायः हम केवल कार द्वारा एक घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते कि इस एक घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चल रही थी अथवा नहीं। कहने का मतलब है कि जब भी हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो हम नहीं देखते कि वो एक नियत चाल से चल रही थी या नहीं, हम बस क्या देखते हैं कि उसने उस एक घंटे के दौरान कितनी दूरी को तय किया। इससे हम स्पीड निकालते हैं, इससे हम चाल को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वास्तव में यहां ज्ञात की गई चाल कार की औसत चाल है। क्या है? एक औसत चाल है, एवरेज स्पीड है, ठीक है। इस अध्याय में औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग किया गया है। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा के अनुदिश नियत चाल से गति कर रही होती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। एक समान गति की स्थिति में वस्तु की वास्तविक चाल ही उसकी औसत चाल होती है। यानी कि कोई एक रेखा या कोई भी एक पाथ है जिसपे कोई एक ऑब्जेक्ट गति कर रहा है तो उसकी जो गति है वह एक समान गति कहलाती है। एक समान गति की स्थिति में वस्तु की वास्तविक चाल ही उसकी औसत चाल होती है। तो मतलब जिस स्पीड से वो चल रहा है वही उसकी एवरेज स्पीड भी कहलाती है। और आपकी बुक में जहां पे भी चाल आएगा उसको आप खुद ही समझ जाइए कि वहां पे किसकी बात हो रही है, औसत चाल की बात हो रही है। औसत चाल के लिए यहाँ पे चाल शब्द का ही प्रयोग आपकी किताब में किया गया है, ठीक। यदि वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी में लिए गए कुल समय का भाग देकर वस्तु की चाल को ज्ञात किया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पीड या चाल कहेंगे। चाल निकालने का फॉर्मूला बॉक्स में दिया है। तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड और उसके नीचे भाग देना है अपॉन लिया गया कुल समय, टाइम टेकन। तो उससे क्या निकलेगा? हमारी स्पीड निकल जाएगी, ठीक है। अतः यदि हम किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा उसे तय करने में लगे समय को माप लें तो हम उस समय की उस वस्तु की चाल को ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें दो चीज पता चल जाए कि वह गाड़ी चली तो उसने इतना समय लिया और इतनी दूरी तय की, तो हम उसकी स्पीड आसानी से निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल चाल को समय से ही गुणा करना है। मान लीजिए आपको केवल चाल या स्पीड दी है और समय दिया है, तो आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। और समय कैसे निकालेंगे? तय की गई दूरी उसके नीचे भाग देंगे चाल से, ठीक। तो ये इसी वाले फॉर्मूले से कुछ दो फॉर्मूले और बने, मैथमेटिकल इक्वेशन ये फॉर्मूला है। आप समझ सकते हैं कि कैसे हम इसको गुणा भाग कर रहे हैं। एक वैल्यू दी है तो दो वैल्यू दी है तो हम तीसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हम इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया है और क्या नहीं, ठीक है। आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी, ठीक। अब बात करेंगे वस्तु की चाल का मापन, गतिविधि नंबर दो, पेज नंबर 106 पर। फर्श पर चौक से एक सरल रेखा खींचिए तथा अपने मित्र से कहिए कि वह इस रेखा से लगभग 2 मीटर दूर खड़ा हो जाए। अब उससे कहिए कि वह किसी गेंद को इस सरल रेखा के लंबवत व फर्श के अनुदिश धीरे से लुढ़काए, एक बॉल ले और उस लाइन पर लुढ़काए। एक स्टॉपवॉच लीजिए और जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है उस समय स्टॉपवॉच चालू करें, ठीक है, तथा जिस क्षण वह रुक जाती है उस समय स्टॉपवॉच बंद कर दीजिए। कहने का मतलब है कि पहले आपको एक रेखा अंकित करनी है, ठीक है, किसी भी फर्श पे या किसी मैदान में, और अपने फ्रेंड को बोलना है कि आप उससे 2 मीटर दूरी पे खड़े हो जाओ और उसके हाथ में एक गेंद दे दीजिए। अब आपको अपने हाथ में स्टॉपवॉच रखनी है और उससे कहना है कि वो बॉल को धकेले धीरे से, और जब बॉल लाइन को क्रॉस करती है तब आपको स्टॉपवॉच शुरू करनी है, और जब वह रुक जाती है स्टेशनरी हो जाती है तब आपको क्या कर देना है, उसको रोक देना है स्टॉपवॉच को। इस प्रकार आप ज्ञात करें कि गेंद रुकने में कितना समय लेती है, ठीक। रेखा एवं गेंद की विराम स्थिति के मध्य की दूरी को एक फीते या स्केल की सहायता से मापिए, और डिस्टेंस को भी आप नाप सकते हैं। कैसे? डिस्टेंस नापने के लिए कुछ टेप आती हैं, कुछ फीते आते हैं, वो आप उससे उसको नाप लीजिए कि कितना उसने दूरी को तय किया रेखा से निकल कर रुकने तक। समय और दूरी के मापों के मान को आगे दी गई सारणी 11.4 में लिखिए। इस क्रियाकलाप को 4 से 5 बार दोहराइए और पाठ्यांकियों से गेंद की चाल ज्ञात कीजिए। अब आप पेज नंबर 107 पे आएंगे, देखेंगे इस एक्टिविटी के आधार पर जो अभी आपने गतिविधि की उसको आपको 3-4 बार रिपीट करना है, ठीक, और गेंद की स्पीड निकालनी है। और स्पीड के लिए हमें क्या दो पैरामीटर्स चाहिए होते हैं? एक तो डिस्टेंस, जिसको S से डिनोट करते हैं, S से हम उसको दर्शाते हैं, और समय, लिया गया समय, जिसे हम T, और ये होता है सेकेंड में, और जो हमारा डिस्टेंस है वो होता है मीटर में, ठीक। तो हमारी जो चाल निकल के आएगी वो मीटर प्रति सेकेंड में निकल कर आएगी, ठीक। तो इनको आपको अपनी एक्टिविटी के आधार पर करना है, ठीक। अब बात करेंगे चाल का मात्रक, ठीक, यानी यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड समझ लिया हमने, चाल को हम समझ गए, चाल कैसे निकालते हैं, ठीक। अब बात करेंगे कि चाल की यूनिट क्या है, चाल का मात्रक क्या है, ठीक। उपयुक्त गतिविधि में अपने गेंद की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात की, जो ऊपर गतिविधि की हमने किस में निकाला, मीटर पर सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड चाल का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है, कैसा, इंटरनेशनल यूनिट है। चाल के अन्य मात्रक हैं सेंटीमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा आदि, ये कुछ और यूनिट्स हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिया गया है। देख लीजिए कि किसी में भी किलोमीटर्स पर आवर्स नहीं है या मीटर्स पर सेकेंड्स नहीं है, सिर्फ एक वचन है, मीटर पर सेकेंड। ठीक, उदाहरण के लिए दूरी के लिए हम 50 किलोमीटर लिखते हैं ना कि 50 किलोमीटर्स, अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं ना कि 8 सेंटीमीटर्स, एक वचन लिखते हैं, बहुवचन में नहीं लिखना है। आपने स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस अथवा किसी अन्य वाहन में चित्र 11.5 में दिखाए अनुसार एक मीटर लगा हुआ देखा होगा। आपके घर में पापा या मम्मी गाड़ी चलाते हो तो आपने देखा होगा कि इस तरीके का ऑडोमीटर या स्पीडोमीटर जो चित्र 11.5 में आपको दर्शाया है वो लगा होता है, देखा होगा आप सभी ने। नहीं देखा तो एक बार उसे ध्यान से आज जरूर देखिएगा, ठीक है। वह किसी वाहन के मीटर का अवलोकन कीजिए और उसमें देखेंगे कि किलोमीटर पर आर लिखा है, इसे चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। देखिए वहां इस चित्र में भी दिया गया है किलोमीटर पर आर या किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, इसको हम स्पीडोमीटर या ऑडोमीटर कहते हैं। वाहनों में एक अन्य मीटर होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी नापता है, जिसको पथमापी या ऑडोमीटर कहते हैं। तो ये ऑडोमीटर का आपको चित्र दिया गया है। अब आएंगे हम गतिविधि नंबर 3 पर, जिसमें हमें ग्राफ बनाना है, दूरी समय और ग्राफ दूरी और समय का ग्राफ हमको बनाना है। अब उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक ग्राफ पेपर चाहिए। अगर आपके पास कोई ग्राफ बुक है तो उसमें ग्राफ पेपर लेना है और चित्र 11.6 आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाया गया है, 108 पर जो ग्राफ दिया है उसमें इस तरीके का चित्र बन रहा है। उससे देखिए कि क्या करना है आपको, उस चित्र को खोल के समझने की कोशिश कीजिए कि एक दूसरे के लंबवत दो रेखाएं खींचनी है। क्षैतिज रेखा पर एक्स ओ एक्स अंकित कीजिए, जिसे एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स रे कहते हैं, ठीक है। इसी पर ऊर्ध्वाधर रेखा पर वाई ओ वाई अंकित कीजिए, इसे वाई अक्ष कहते हैं। देखिए आप अपने डायग्राम में वाई ओ वाई और एक्स ओ एक्स कैसे बनी हुई है, देख रहे हैं आप चित्र 11.6 ग्राफ पेपर का जो दिया है, इसको ऐसे बनाना है, ठीक है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में, ठीक है। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसको मूल बिंदु या ओ कहते हैं। जिनको दो राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है उन्हें इन्हीं दो अक्षों के अनुदिश दर्शाया जाता है। हम एक्स अक्ष पर ध्यान धनात्मक मानों को ओ एक्स के अनुदिश दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, ओ एक्स, ठीक है। इसी प्रकार जो वाई अक्ष है उस पर धनात्मक मानों को ओ वाई के अनुदिश दर्शाते हैं। देखिए इस अध्याय में हम केवल राशियों के धनात्मक मानों पर ही विचार करेंगे, तो ओ वाई और ओ एक्स जो ये वाला कॉलम है इस पर ही हम दर्शाएंगे। ओ एक्स ओ वाई जो आपके राइट हैंड की तरफ ऊपर वाला कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, उसमें हम इनको दर्शाएंगे, ठीक है। इस अध्याय में केवल राशियों के धनात्मक मानों पर ही हमने चर्चा करनी है। किसी वाहन की गति के लिए समय तथा दूरी के मानों को सारणी 11.5 में दर्शाया गया है। जैसे समय लेता है 10 मिनट कोई भी वाहन और दूरी तय करता है 5 किलोमीटर, तो ग्राफ बनाने के लिए चरण, ये सारणी को आपको सिर्फ रीडिंग लेना है, और ग्राफ बनाने के लिए दो अक्षों को निरूपित करने के लिए दो लंबवत रेखाएं खींचनी है। दो लंबी रेखाएं खींचनी है, हम पहले भी बताया आपको किस तरीके से, वाई ओ वाई और एक्स ओ एक्स, ठीक। अब आएंगे आप पेज नंबर 109 पर, ग्राफ के बारे में ही बात कर रहे हैं अभी हम। दूसरा पॉइंट है कि यह निश्चित कीजिए कि एक्स अक्ष के अनुदिश किसी राशि को दर्शाना है तथा वाई अक्ष के अनुदिश किसे दर्शाना है। एक्स अक्ष के अनुदिश समय तथा वाई अक्ष के अनुदिश दूरी को दर्शाना है। एक्स एक्सिस पे हम क्या दर्शाएंगे, टाइम, और y एक्सिस पे क्या दर्शाएंगे, डिस्टेंस या दूरी। इतना समझ लिया आपने, ग्राफ समझ लीजिए, फिर ग्राफ को देखकर इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, आराम से समझ में आएगा। तीसरा, ग्राफ दूरी को निरूपित करने के लिए कोई पैमाना चुनिए तथा समय के निरूपण के लिए कोई अन्य पैमाना चुनिए। पैमाना चुनना है आपको कि एक जो उसमें बॉक्स बने हैं छोटे छोटे, उसको आप कितना मानेंगे, उसकी वैल्यू कितना लेंगे। तो x अक्ष पर समय 10 मिनट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर वाले कॉलम को 10 सेंटीमीटर 10 मिनट डिनोट करेगा x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर यदि 5 किलोमीटर डिस्टेंस आप 1 सेंटीमीटर का ले रहे हैं तो एक जो बॉक्स है वो डिनोट करेगा 5 किलोमीटर डिस्टेंस को। समझ गया, छोटे छोटे जो उसमें बॉक्स होते हैं। उसके बाद चुने गए पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को अपने अपने अक्षों पर अंकित करना है। कार की गति के लिए समय को एक्स एक्सिस पर मूल बिंदु से 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट अंकित करनी है। एक्स एक्सिस पर देखिए आपने कितना बॉक्स लिया, 1 सेंटीमीटर 10 मिनट बताता है, तो फिर एक बॉक्स जो 1 सेंटीमीटर का है वो कितना हो गया, छोटा बॉक्स, हाँ 10 मिनट का, दूसरा वाला बॉक्स 20 मिनट का, 30 40 50 ऐसे आपको अंकित करना है। इसी प्रकार y एक्सिस पर 5 किलोमीटर का एक था हमारा, फिर उसके ऊपर 10 15 20 25 किलोमीटर अंकित करना है। समझ गए आप, बनाते जाइए साथ में। सारणी 11.5 के प्रथम प्रेक्षण में समय 0 मिनट पर चली गई दूरी 0 है। मानों के इस समुच्चय की ग्राफ की पेपर पर स्थिति मूल बिंदु O पर है। 10 मिनट के पश्चात कार ने 5 किलोमीटर की दूरी तय की है। देखिए बनाया हुआ है 11.7 में जो ग्राफ हम आपको समझा रहे हैं उसी प्रकार का ग्राफ बनेगा। 10, 20, 30, 40, 50 ये क्या थी, मिनट, और इधर था आपका टाइम टेकन, और फिर उनको आपको बिंदुओं से मिलाता जाना है। तो ये आपका बताएगा कि कितना आपकी स्पीड निकल कर आ रही है। तो देखेंगे कि वह बिंदु जिस पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटें, एक दूसरे को काटती है, ग्राफ पेपर पर इन मानों की समुच्चय 10.5 को निरूपित करता है। देखिए पहला वाला बताया बनाकर। इसी प्रकार ग्राफ पेपर पर मानों के विभिन्न समुच्चयों के अन्य बिंदुओं को आपको अंकित करना है। ठीक, बहुत आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इन बिंदुओं को मिलाइए और बिंदुओं को मिलाने पर सरल रेखा, सीधी रेखा आपको प्राप्त होगी। यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो यह संकेत करता है कि वस्तु किसी नियत चाल से गति कर रही है, परंतु यदि किसी वस्तु की चाल लगातार परिवर्तित होती है तो ग्राफ की आकृति कुछ अन्य प्रकार से हो सकती है। ठीक, इस तरीके का ग्राफ आपका बनकर आएगा जैसा चित्र 11.7 में दिया है। अब बात करेंगे गतिविधि नंबर 4 की। ये गतिविधि आपको समझ में आ गई, जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन आएगी उसको आपको बनाना है। एक्स और वाई एक्सिस पर ही हम केवल इस ग्राफ को बनाएंगे या दर्शाएंगे, फिर इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट्स को, और फिर एक वो जो पॉइंट्स जहां पे एक दूसरे को काट रहे हैं सीधा लंबी लाइन बना देंगे। अब बात करेंगे चौथी गतिविधि की है, पेज नंबर 110 पर। वस्तु की दूरी एवं समय ग्राफ के किसी बिंदु से हम पता लगा सकते हैं कि किसी समय पर उसने कितनी दूरी तय की। एक वाहन ने किसी स्थान से दिन के 1 बजे चलना प्रारंभ किया, इसी गति के लिए तय की गई दूरी एवं समय के मान आगे सारणी 11.6 में दिए गए हैं, जिसका ग्राफ चित्र 11.8 में दर्शाया गया है। एक सारणी दिया आपको और उसका ग्राफ आपको बनाकर दिखाया है। देखिए उसी प्रकार से आपको भी ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ये चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर है, ग्राफ और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इसमें जरूर आती हैं। यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है। अब एक बार समरी देख लेते हैं, आपने क्या सीखा। आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। देखिए हमने जाना कि जो आवर्ती घटनाएं घटित होती हैं, जैसे एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक, या एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक, या फिर जो सरल लोलक हमने जाना था, तो उनको मापन किया जाता था किसका, किस लिए, समय को मापने के लिए। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे सरल लोलक का आवर्तन कहते हैं, ठीक है, आवर्तकाल कहते हैं। समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। अभी हमने जाना कि सेकंड एक मूल मात्रक है किसका, समय का। मिनट, घंटा, दिन, वर्ष आदि समय के अन्य मात्रक हैं, ठीक है। वस्तुओं की चाल द्वारा उनकी मंद एवं तीव्र गति की तुलना कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कौन सी चीज किस गति से चल रही है उसकी तीव्रता और उसकी मंदता हम कंपेयर कर सकते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। कोई भी वस्तु किसी एक समय में कितनी दूरी तय करती है उसको उसकी चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी में उसमें लगने वाला समय भाग देने पर वस्तु की चाल प्राप्त होती है। किसी वस्तु को कितना मतलब टाइम लगा इतने डिस्टेंस को तय करने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, स्पीड। और इसका जो मूल मात्रक है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड, या चाल के अन्य मात्रक अभी हमने आपको बताए थे सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। ये सिर्फ एक वचन होते हैं, बहुवचन नहीं होते हैं, ठीक है। नियत चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन होता है। यही बात याद रखनी है कि जो भी हम एवरेज स्पीड निकालते हैं किसी भी वाहन की, उसको हम स्ट्रेट लाइन पाते हैं किस पे, ग्राफ पे बनाने पे। ग्राफ की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, उसके लिए आपको ग्राफ पेपर लेना है और जो दो चार्ट, दो सारणी आपको दी है, एक सारणी 11.5 उसमें समय और दूरी दी है। याद रखिएगा कि हम कौन सी एक्सिस पे क्या डिनोट करते हैं, तो वाई एक्सिस जो है, वाई अक्ष जो है, उसमें हम डिस्टेंस बनाते हैं और जो एक्स एक्सिस है उस पे हम समय को दर्शाते हैं या टाइम टेकन को दर्शाते हैं, ठीक है। और जब भी हम इन दोनों उसको लेंगे, समय और दूरी को लेते हैं, तो सेल का हम पैरामीटर डिसाइड कर लेते हैं कि इतना जो सेल है वो इतनी चीज को दर्शा रहा है। जैसे एक छोटा सेल इसमें जो 1 सेंटीमीटर का होता है वो क्या दर्शा रहा है, अगर हम दूरी की बात करें तो 5 किलोमीटर क्या दर्शा रहा है, एक सेल। और अगर समय की बात करें तो 10 मिनट दर्शाती है एक सेल। इस तरीके से आपको ग्राफ पर जरूर लिखना है, तब आपको ग्राफ बनाना है। और जब भी आप ग्राफ को बनाएंगे तो जहां पे पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हैं कि इतने मिनट पे इतनी दूरी तय की, उसको जब मिलान करेंगे तो सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। तो यही हमारा स्पीड टाइम ग्राफ कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके लिए जो दो सारणी दी है 11.5 और सारणी 11.6, उससे आपको प्रैक्टिस करना है और ग्राफ बनाना है, ठीक है। अगली ऑडियो में हम अभ्यास कार्य को डिस्कस करेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए और इस चैप्टर को पढ़िए। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।